نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سیلف گرومنگ کے سلسلے میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کل کی زندگی آج جی لے. کیا مطلب؟ جو کل آنے والا ہے اس سے پہلے ہی آج جی لے. تو آئیے چند سوال ہم خود سے کرتے ہیں. پہلا سوال، آپ زندگی سے کیا چاہتی ہیں؟ آپ اس کو اپنے لیے لکھ لیجئے، میں زندگی سے کیا چاہتی ہوں؟ پھر میں کیا کرنا چاہتی ہوں؟ اور میں کیا پانا چاہتی ہوں؟ کیا کرنا چاہتی ہوں؟ کیا پانا چاہتی ہوں؟
بیٹا ادھر آئے.
آپ زندگی سے کیا چاہتی ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کیا پانا چاہتی ہیں؟ پھر اگلا سوال کریں، اگر ہر چیز آپ کی مرضی، خواہشات اور سوچوں کے مطابق ہو جائے، یعنی رستے کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی آبسٹیکل نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں، یعنی 110% آپ کے حالات آپ کے موافق ہو جائیں. پہلے میری اس بات کو سمجھیں، ڈریم لگ رہا ہے نا؟ یعنی کوئی زیر زبر بھی اونچی نیچی نہ ہو، 100% اگر آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ ہو جائے جیسے حالات آپ چاہتی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ بات سمجھے؟ ایک جملہ تفسیر میں بولا تھا، وہ یہاں یاد آ رہا ہے، کہ مجبوریوں کے پردے میں بہت سارے لوگوں کی منافقت چھپ جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں ہم پہ پابندیاں ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے کہ پابندیاں ہیں. پابندی نہیں بھی ہوگی نا، مخالفت نہیں بھی ہوگی نا، لیکن ہمارے اندر کے نفاق نے ہمیں نماز وہ پڑھنے نہیں دینی، یا ہمیں وہ نیکی کا کام کرنے نہیں دینا، وہ جرات نہیں ہوگی جو دوسرے کے اوپر ہے. مثال ہے کہ ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے میرا بہت دل کرتا ہے میں نقاب کروں. کوئی بھی مثال لے لیں. ایک مرد ہے، برادر ہے، وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے داڑھی رکھوں، لیکن کوئی پابندی ہے اس پہ فلاں فلاں، تو وہ سوچتا ہے اس پابندی کی وجہ سے میں نہیں کر رہا، لیکن وہ پابندی رحمت ہے. کیوں بھلا؟ کہ پابندی نہیں بھی ہوگی تو اس نے کرنا کوئی نہیں، کیونکہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. مشکلات چھٹ جاتی ہیں، آسانی آ جاتی ہیں. کب؟ جب اللہ ہمارا سچا ہونا دیکھ لیتا ہے، ہماری کمٹمنٹ دیکھ لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا کے، اے یہ تو تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو زندگی میں یہ سب کچھ ہو کہ جب آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو پھر آپ کہاں ہوں گے؟ یہ اب آپ خود سے پوچھئے. اگر کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل، کوئی گھڑا، کوئی بدقسمتی آپ کے پاؤں کی بیڑی نہ بن پائے، تو 5 سال کے بعد آپ کی زندگی کیا ہوگی؟ سوچئے ذرا. آپ یہاں اپنے آپ کو اس کلاس روم میں لے کے بیٹھتی ہیں نا ہر ویک، اب آپ سوچئے، یا 2 دن یا 4 دن، اگلے 5 سال میری زندگی کے اگر مجھے ویسے ہی گزارنے دیے جائے جیسے میں چاہتی ہوں، کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی بیڑی نہ پاؤں میں پڑے، تو میں کہاں ہوں گی؟ میری زندگی کیسی ہوگی؟ ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ آپ جو چاہیں گے، جو مانگیں گے، جو پسند کریں گے، جو آرزو کریں گے، جو سوچیں گے، سب سچ ہو جائے گا، تو 5 سال کے بعد آپ کی زندگی کیسے بدل کے رہ جائے گی؟ آپ دیکھیے کہ ہم بہت کچھ بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ حالات کے دھارے میں بہتے ہیں. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. ایک ہی ماحول تھا مکہ کا، ایک ہی پیغام اترا حرا سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور ایک ہی دعوت تھی نبی کی سارے مکہ والوں کے لیے، قول لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگ اللہ کو ایک کہو فلاح پا جاؤ گے. لیکن کیوں چند 5-6 لوگوں کے سوا بہت سارے لوگوں کو بات فوراً سمجھ نہ آئی؟ بات میں تو بہت ساروں کو سمجھ آ گئی الحمدللہ، فوراً کیوں نہ آئی؟ جو بات ہے حضرت خدیجہ کو سمجھ آ گئی، حضرت علی کو آ گئی، حضرت ابو بکر کو آ گئی، حضرت زید کو آ گئی، وہ بہت سارے لوگوں کو کیوں نہ آئی؟ इसकी वजह क्या होती है कि जिनके अंदर हक़ की तलाश होती है ना, जो सच को वो ढूंढ रहे होते हैं, तो हिदायत को और हक़ को पाकर वो ऐसे लपकते हैं कि जैसे परदेश में कोई अपना हम वतन मिल जाए, कोई हम जोली, कोई बचपन की सहेली मिल जाए। वो हक़ को गले लगा लेते हैं, कहते हैं हाय बहुत दिन से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम कहाँ चली गई। कभी बचपन की कोई दोस्त आपको दुनिया के किसी मेले में मिले तो आप कहते हैं अरे तुम किधर थी। तो फिर आप में कोई बेगानगी नहीं होती, थोड़ी देर बाद आपको ऐसे लगता है कभी बिछड़े भी नहीं थे। तो हक़ और कामयाबी जिस बंदे की तलब होती है ना, उसको रुकावटें रोकती नहीं हैं, मुश्किलात नहीं रोकती। ये कब रोकती हैं? जब अंदर से यकीन में कमी होती है। देखिए जब मौसम बदलता है तो कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ नहीं होते। आप कहते हैं आजकल वायरस फैला हुआ है, क्या उस वायरस से सारे लोग बीमार हो जाते हैं? नहीं। किन को असर होता है वायरस का, एलर्जी का, गर्मी का, सर्दी का? जो अंदर से कमज़ोर होते हैं। सेहतमंद लोग उसी फिज़ा में ठीक ठाक दन दनाते फिरते हैं, और कमज़ोर अंदर से किसी भी तरह वो कहते हैं छींकें आ गई, पोलन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से आप और मैं अगर अपने आप को किसी जगह देखना चाहते हैं ना कल, तो उसके लिए आज हमें इसका यकीन रखना पड़ेगा। कल के आईने में आज खुद को देखें, कल कहाँ जाना चाहती हूँ इसको आज ड्रीम बनाएं, इसको आज देखें, आज देखिए इस सारी चीज़ को। इससे आप देखेंगे कि आपको ख्वाबों में भी अपना मुस्तकबिल दिखेगा। जब तक हम ड्रीम्स नहीं देखते ना, हमारे ड्रीम सच नहीं होते। अगर आपने मुस्तकबिल में ये ड्रीम नहीं बनाया हुआ ना कि आप अरबी में से कुरान, उर्दू या नौश्क में या इंग्लिश में पढ़ें, तो आप हर क्लास में नहीं आ सकेंगी। ये जो बीच में छुट्टियां हो जाती हैं, बीच में सुस्तियां आ जाती हैं, रुकावट आ जाती है, मजबूरियां आ जाती हैं, ये नहीं रोकेंगी आपको। आएंगी तो सही, हर एक की आती हैं, पर वो रुकेंगे नहीं। आप कहेंगे मारो कूटो मुझे वहीं छोड़ो। आपको था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक साथ साथ होते थे। तो एक ऐसा मौका था कि अल्लाह के नबी जब हरम में खड़े होकर दीन की दावत दे रहे थे ना, तो कुफारे मक्का टूट पड़े आपको मारने के लिए, तो अबू बकर सिद्दीक उनको बचाने के लिए बीच में आ गए। खबरदार क्या कह रहे थे, अतक तुलूना रजुलन, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल करते हो, अं यकूलु रब्बी अल्लाह, कि वो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह। इतना मारा कि वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर को मारने लग गए कि अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि जब उनको उठा कर लेकर आए तो उनके बाल इस तरह से नोचे हुए थे दुश्मनों ने कि हाथ लगाते थे तो उनकी लट्टों की लट्टें बालों की हाथों में आती थी। लेकिन ऐसे वक्त में भी जब अबू बकर सिद्दीक को होश आया तो उनकी ज़ुबान पे क्या था आपको पता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? फिर वहाँ पहुँच जाते थे, चोट नहीं लगती थी, दर्द नहीं होती थी, सब होता था, लेकिन मकसद का यकीन। जब तक हमें ज़ौके यकीन नहीं होगा तो हमारे रास्ते की जंजीरें नहीं टूटेंगी, क्योंकि जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अगर अलादीन का जिन आपके सामने हाथ बांध के खड़ा आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहा हो तो आप इसे क्या हुक्म देंगी? अब ये किरदार है अलादीन, जो भी उसको छोड़ दे, हम सब ने बचपन में पढ़ा हुआ है, हाज़िर हो जाता था फिर जो काम कराना है। मतलब ये है कि कोई फरिश्ता ही खड़ा हो जाए कि आप जो कहेंगी वो करूँगा, तो आप उसको क्या हुक्म देंगी? वो बुटीक में से फलां नया जोड़ा मेरे लिए ले आओ, अम्मी नहीं लेके देती, मुझे गोल्ड का सेट ला दो, मुझे वो डायमंड की रिंग चाहिए, और मुझे आईफोन 6 चाहिए, 7 चाहिए, ये कहेंगी। क्या देखना चाहेंगे आप कि वो आपको क्या दिखाए? क्या बनना चाहेंगे आप और क्या पाना चाहेंगे? कौन सी जगहों की सैर करना चाहेंगे आप? किसे दोस्त बनाना चाहेंगे? कहाँ घूमना फिरना चाहेंगे? क्या तजुर्बात करना चाहेंगे? कौन से एहसासात जो आपने आज तक महसूस नहीं किए वो महसूस करना चाहेंगे? किस किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहेंगे? किस कंपनी में आप जॉब करना चाहेंगे? कितने पैसे आप कमाना चाहेंगे? और किस प्रोफेशनल पोजीशन में आप बैठना चाहेंगे? किन मामलात में आप खुशकिस्मत होना चाहेंगे? यदि चंद सवाल है हर एक के ऊपर, हर एक सवाल फिट तो नहीं होगा, लेकिन आप क्या चाहेंगे, किस तरह के माहौल में जीना पसंद करेंगे, किस तरह का घर आप चाहेंगी, किस तरह के हमसाए हों आपके, किस किस्म का कल्चर हो, किस किस्म की आज़ादी हो, कोई ना पूछे, ना माँ पूछे ना बाप पूछे, जो चाहें आप करें, जिधर चाहें आप जाएं, किस तरह की कम्युनिटी हो आपकी, किस किस्म की आपकी सहूलतें हों, किस तरह का मौसम आप चाहेंगी, किस किस्म का लाइफस्टाइल आप चाहेंगी। क्योंकि जब बंदे के हाथ में तकदीर का कलम दे दिया जाए तो वो तो यही चाहेगा ना, जो मैं चाहूँ वो होगा, वो लिखो जो मैं चाहूँ, जो मैं चाहूँ। तो आप मॉडर्न स्टाइल ज़िंदगी चाहेंगे या पुरानी, यानी आपको अगर चॉइस मिल जाए तो आप क्या मॉडर्न स्टाइल की लिविंग चाहेंगी या ओल्ड स्टाइल की? क्या आप गाड़ी में जाना चाहेंगी अपनी पसंदीदा जगह पे, या आप गाड़ी के बगैर किसी रिक्शे पे जाना चाहेंगी, या जहाज़ में या हेलीकॉप्टर में? गाड़ी खुद चलाना चाहती हैं या आपका कोई ड्राइवर हो, यूनिफॉर्म हो? यानी हर एक सोचे, आइडियलाइज करना इसको, ये सारे जो सवाल है ना इनको लिखे, ये आइडियलाइजेशन है। अब ये दुनियादारी की बातें हैं ना, माल दौलत घर गाड़ी ये वो दिस दैट, लेकिन आप चूँकि स्टूडेंट्स हैं ना और साथी हैं जो कुरान सीखते सिखाते हैं, हेल्प करते हैं, मुझे तब ये ख्वाब भी अजीब लगते हैं दिखाने, जो दुनिया का गोल है ना वो हमारे पाँव की नोक के नीचे है। फेम, शोहरत, दौलत, माल, इज्जत, इनको क्या करना है? मैं आपको ख्वाब दिखाती हूँ, क्या आप क्या सोचती हैं? पूरे कुरान पाक की तफसीर आपको अजबर हो, लफ्जी तर्जमा आपकी टिप्स पे हो, कोई कहीं कुरान की आयत सुने आप कहते हैं ये सूरत मोमिन की आयत है, कहीं कोई बात आए किसी की सामने तो आपको झट से उसके मुताबिक कुरान की आयतें 10 याद आ जाए। कितने लोगों का ये ख्वाब है? देखिए, अगर ख्वाब नहीं है तो आपको मिलेगा कभी नहीं, लेकिन अगर ख्वाब है ना, एक दिन आप इसको पाएंगी। शर्त एक है, पिछले सेशन में हमने बात की थी, कीमत देनी पड़ेगी। पहले ख्वाब देखें, फिर उसकी कोशिश करें, फिर उसकी कीमत दें। सारी दुनिया कुछ और करे, आपको अपने ख्वाब पूरे कराने हैं, फिर आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा होगा। अगर हम अपनी अगली 5 साल ज़िंदगी को आइडियलाइज करें आज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें, और उनको आप इमेजिनेशन में बना लें। जैसे मुझे मालूम है कि कुछ लोग ऐसे हैं, किसी ने ऐसे शेयर भी किया था कि उनको अपना वेट लूज़ करना था ना, तो जैसे ये लोग कंसल्टिंग करते हैं या जैसे लोग भी फूड डाइट देते हैं, तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने उनको कहा कि मुझे करना है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पहले तुम एक अपनी डमी ऐसे जैसे एक वो फिगर सा बना के, जितना दुबला तुम खुद को देखना चाहती हो उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगाओ, और इसको तुम वहाँ रखो जहाँ तुम्हारी अक्सर नज़र पड़े। होगा क्या भला, तसव्वुर में आएगा कि आज से 1 महीने, 2 महीने, 4-6 महीने बाद मैं इतनी स्मार्ट हो जाऊँगी, स्लिम हो जाऊँगी, तो फिर वो फालतू चीज़ें भी नहीं खाने को दिल करेगा, और डाइनिंग टेबल के ऊपर रख लें ऐसी तस्वीर बनाकर, तो पराठे का लकमा अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका ख्वाब है। इसी तरह एक और मुझे याद है कि एक क्लास थी तो उसमें जन्नत की बात थी ना, तो उन्होंने कहा कि आप जन्नत के बारे में सुनने से पहले विजुलाइज़ करें कि आप जन्नत में फिर रही हैं, आप घूम रहे हैं, आप ऐसी जगह पे, आपका घर ऐसा होगा, यानी ख्वाब देखें। मैं अक्सर कहती हूँ आप लोगों से भी कि अपने घरों में जन्नत की बातें किया करें, अपने बच्चों से, बेटा तुम्हारा वहाँ बेडरूम कैसा होगा, तुम पिंक लोगी के पर्पल लोगी के ब्लू लोगी के रेड लोगी, अपने बच्चों को ख्वाब दिखाएं, फिर क्या होगा, उन ख्वाबों को पाने के लिए वो तैयार होंगे, मेहनत करेंगे। जब हम मुस्तकबिल के ख्वाब नहीं देखते ना, तो हमारी ज़िंदगी हर दिन पहले से भी अबतर हो जाती है। तो आज से आप अपना ख्वाब लिखें, आप अपने घर में, अपनी गाड़ी पे बैठते हुए, कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ भी आपकी अक्सर नज़र पड़ती है वहाँ अपने ख्वाब बनाकर रखें, लिखें, सब कुछ देखें, छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें, और यकीन से देखें, और इन तस्वीरों को फिर तस्वीरों में बदलिए, और तस्वीरों को फिर चलती फिरती ज़िंदगी की फिल्म में बदलें, फिर आप देखेंगे कि आप काम करें। जब आप 5 साल के बाद देखेंगे कि हर रुकावट, हर बंदिश, हर उलझन, हर परेशानी और हर जंजीर से बच के आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी हो चुकी होगी जैसा आपने ख्वाब देखा था, आइडियलाइज़ किया था जिसको, तो आपको यकीन भी नहीं आएगा कि आपकी आंखें वो देखेंगी जो आप देखना चाह रहे थे, आप वो सुनेंगे जो आप सुनना चाह रहे थे, आप वो महसूस करेंगे जो महसूस करना चाह रहे थे, आपकी ईटिंग हैबिट्स बदल चुकी होंगी, आप कपड़े कैसे पहनना चाहती हैं फ्यूचर में वो कपड़े आपके बदल चुके होंगे, आप बिल्कुल अपने आप को इमेजिनेशन में देखेंगी वैसे ही होगा। और मैंने कई लोगों को बदलते देखा। सुबह मेरे सिर में एक लफ्ज़ पता नहीं क्यों घूम रहा था, कल रात को गालिबन, यानी ऐसी कोई बात हो रही थी ना, तो इस्तकलाल, यानी हमारे कदमों में वो नहीं होती। इस्तकलाल को इंग्लिश में या अरबी में अज़्म कह लें, यानी हम कोशिश शुरू करते हैं किसी भी काम की बड़े जोश से, नई कापी ख़रीदेंगे, अब मैंने नोट्स बड़े अच्छे लेने हैं, अब मैंने कोई छुट्टी नहीं करनी, इस कोर्स में तो मेरे 100% मेरी रोल कॉल होगी, शुरू में बहुत लेकिन जम नहीं पाते। हम चंद दिन बाद खुद से किए हुए वादे तोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग तो दुनिया में कहीं नहीं पहुंचते, यहाँ कहाँ पहुंचेंगे? ये तो अल्लाह की किताब है, ये तो आपकी जन्नत का सौदा होता है इस कमरे में बैठ के, ये आपका रास्ता जन्नत का रास्ता है। ये सबीलुल जन्ना नाम ऐसे थोड़ी है, सबीलुल जन्ना, इसके लिए आपको आज से फिक्र करनी पड़ेगी, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। और आप जो सोचेंगी वैसे होगा, मसलन आप सोचिए कि फ्यूचर में मैं कहाँ रहूँगी। चलिए आप में से कुछ अनमेरिड बच्ची हैं ना, शादी तो अल्लाह ने चाहा तो हो ही नहीं है ना, तसव्वुर में लाएं मैं किस शख्सियत के साथ रहना चाहती हूँ, फ्यूचर में जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने हस्बैंड में क्या खूबियाँ देखना चाहती हूँ। और जिन सिस्टर्स की शादी हो चुकी है और वो ऐसे ही हुई जैसे सब की होती है, पेरेंट्स की मर्ज़ी, कुछ अपनी भी इतनी समझ नहीं थी उस वक़्त, अब आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड और आप दोनों चेंज हो। कुरान ने आपकी ग्रूमिंग कुछ कर दी, अभी बहुत कुछ होनी है। आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड भी हों। अब आप सब लिखिए, अनमैरिड बच्चियाँ लिखें कि मुझे किस किस्म के लड़के से शादी करनी चाहिए, और जो मैरिड सिस्टर्स हैं आप में से वो ये सोचें कि 5 साल बाद मैं अपने हस्बैंड को कैसा देखना चाहती हूँ। अब आपके दिन में एक लंबी सी दाढ़ी आ जाई होगी है, और हमारे दिन में बस ही नहीं दो चार चीज़ों का खौफ आता है, लेकिन आप लिखिए आज से 5 साल बाद जब मैं अपने हस्बैंड से बातें करा करूँगी तो कैसी बातें होंगी, जब मैं अपने हस्बैंड से कोई बात करूँगी और मैं कुरान की आयत आदि भी पढ़ूँगी तो वो पूरी कर देंगे तो मुझे कैसा महसूस होगा। ख्वाब देखिए, आप क्यों एक दूसरे को गाने के बोल सुनाकर मोहब्बत का इजहार करते हैं? आप हज़रत आयशा और हज़रत नबी सल्लम की मोहब्बत का तरीका सीखिए। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा मुझे पता चल जाता है तुम मुझसे कब खुश होती हो और कब नाराज़। कहा कब खुश होती हूँ, कैसे? कहा जब तुम अल्लाह की कसम खाते हुए कहती हो ना रब्बे मोहब्बत, मोहम्मद के रब की कसम, तो मुझे पता चल जाता है तुम्हें मेरे से प्यार है या मुझसे खुश हो, और जब तुम कहती हो रब्बे इब्राहिम की कसम तो मैं समझ जाती हूँ आज तुम मुझसे नाराज़ हो। तो वहाँ तो इतनी मोहब्बतें थी, आप पढ़ें तो से हज़रत आयशा और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, क्यूपिड कपल, रोमांटिक कपल। आज क्या वो दूसरों के बोले हुए बोल आई लव यू कहकर 10 मैसेज जो कई जगह कहीं ने दूसरों को लिखे होंगे, सब ने ये लिखा होगा ओनली फॉर यू, वो मोहब्बत तो नहीं होती ना। लेकिन आप अपने आप को सोचें, फिर आप देखेंगे कि जब डेस्टिनेशन होती है ना, मुझे इस वक्त ये बात कहते हुए ऐसे लग रहा है जैसे आप अपनी गाड़ी के नेविगेटर में डायरेक्शन डालते हैं, ऐसे ही होता है कहाँ जाना है आपने, जब आप डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है आपकी गाड़ी के नेविगेटर में, क्या आ जाता है? एक मैप आता है ना, खुद ब खुद वो आंटी जी बोलना शुरू हो जाती हैं, राइट हेयर गो देयर, ये करो वो करो, और वो मैप बनता है ना आपका। और आप देखें कि लोग बातें कर रहे होते हैं वो सिर्फ उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, एंड पे वो कहते हैं योर डेस्टिनेशन इज़ ऑन राइट हैंड दिस एंड दैट, कहते हैं ना। बस ये काम इस वक्त आपने करना है, अपने जहन के नेविगेटर में अपनी सक्सेस को लिखिए, मुझे यहाँ पहुँचना है मैं पहुंचूंगी। देखिए रास्ते में कितने बम्प आते हैं, कितने मोड़ आते हैं, कितनी रुकावटें आती हैं, लेकिन आप पहुंच जाते हैं ना अपनी डेस्टिनेशन पे, रुकते तो नहीं। कभी आपने कहा कि मैं सिर्फ उस जगह जिंदगी में जाऊंगी मेरे और उसके घर के रास्ते में एक मोड़ भी ना हो, तो फिर एक रोड के एक कोने से लेकर दूसरे पे तो आप चली जाएंगी, मुड़ेंगी नहीं। इसी तरह हमारी जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं, और ये मोड़ क्यों आते हैं, अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है कि हम कितने सच्चे हैं अपनी इस लगन में। और जिस जगह हम मुड़ जाते हैं ना घबरा के, नहीं, मुझे नहीं जगह मिलेगी, मैं नहीं ढूंढ सकती, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मंजिल उसके बिल्कुल करीब होती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप एक ही जगह के गिर्द घूम रहे थे, घूम रहे थे, घूम रहे थे, वो चीज़ उधर ही थी लेकिन आपको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, और बाद में जब आप कोई कहते वो उधर, कहते उसके आगे से तो मैं 4 दफ़ा होके आई हूँ, अच्छा रास्ता किधर, कहते वो अंदर से ज़रा हल्की सी मोड़ मोड़े तो फिर वहाँ गली है, छोटी सी गली है ना, कि फिर आपको मिल जाता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में कामयाबी हमारे इर्द गिर्द होती है, कभी हमें रास्ता नहीं मिलता, कभी हम रास्ते की मुश्किलात को सहना नहीं चाहते। आप अपनी ज़िंदगी की एक एक चीज़ को देखें, आज से 5 साल बाद मैं किन लोगों में उठी बैठूंगी, शहर के बहुत दीनदार लोग, बहुत बामल लोग, लोग मुझे किस नाम से पहचानेंगे, और आप कोई भी लिख ले, क्या मैं किसी मूवी स्टार के साथ बैठना चाहूँगी या क्रिकेट स्टार के साथ, या मैं कोई सुपर मॉडल या गर्ल मॉडल या कोई मैं बहुत ही खूबसूरत मॉडल बनना चाहती हूँ, क्या मैं शो बिज़नेस में आऊँगी 5 साल बाद या मेरा स्टाइल कुछ और होगा, मैं किस किस्म के कपड़े पहनूंगी, मेरे जूते कैसे होंगे, मैं कैसी होंगी, अपने आप को सोचिए। देखिए इस्लाम का भी तो एक अपना स्टाइल है ना, इस्लाम को जब आप सामने रखते हैं तो आपकी ड्रीमिंग होती है। अपने घर को सोचें, आज मेरे घर में क्या कुछ भरा हुआ है, 5 साल बाद कैसा हो जाएगा घर, और आप देखेंगे कि जब आप सोचेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि लोग जिस चीज़ को माल कहते हैं ना, मैं उसको तकवा कहती हूँ, क्योंकि जो काम लोग बहुत कुछ करके माल हासिल करते हैं ना, मालदार हो जाते हैं, दीन की असलाह में बंदा तकवादार हो जाता है। और तकवा क्या होता है, दो चीज़ें हैं तकवा में, एक तो बड़ा मारूफ है, सब ने बचपन से सुना, परहेजकारी, गुनाहों से बचना, डरना, ये सब कुछ, यानी तकवा में एक एंगल है गुनाहों से बचना, ये सबको पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लग पाते फिर भी नहीं बच पाते, लेकिन सबको पता है मुत्तकी कौन है, परहेजगार। लेकिन तकवा का एक दूसरा एंगल बहुत कम लोगों को पता है, और वो बहुत बड़े बड़े ग्लासेस लगाए ना फिर दिखता है, और वो क्या, नेकियों के मवाकों को देखना और अवेल करना, टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज़, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। लोग जो नेकी कर रहे होते हैं ना उस पर बड़े खुश होते हैं, लेकिन जो नेकी छोड़ रहे होते हैं ना उसको उनका एहसास ही नहीं होता, कहते चलो शुक्र है कुछ तो कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत कुछ छोड़ रहे होते हैं। आप देखिए जब हम एक छुट्टी करते हैं ना, हम उस एक छुट्टी के दिन कितनी चीज़ों से महरूम होते हैं। तजवीद के लेसन में शायद हमने 200 लफ्ज़ पढ़े हों उस सबक में, 200 को ज़रब दे दें 10 से तो कितने बन गए, इतनी नेकियां छुट गई एक दफ़ा पढ़ने से। और मेरा नहीं गुमान कि आप एक दफ़ा पढ़ते हों, तजवीद में, लफ्जी तर्जमे में, दोहराने में, आप उस दिन कुरान के लफ्ज़, मेरा ख्याल है कि 1000 लफ्ज़ पढ़ जाते होंगे। मुझे इस दफ़ा हैरत हुई, ये भी हमारा रिसेंट एक ट्रिप था यूरोप का, तो उसमें मैं फ्रांस में थी, तो वहाँ एक सिस्टर हैं जो उर्दू बड़ी फास्ट लिखती है ना टाइपिंग में, तो डिफरेंट लोगों को जो काम असाइन किए थे टीम के, तो उनमें से उनको इन्होंने इस दफ़ा सना ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि साथ साथ इनका लाइव लेक्चर टाइप कीजिए। खैर उन्होंने कहा ठीक है, वो पीछे बैठ गई क्योंकि उनकी टाइपिंग की आवाज़ आती थी, जितने फ्रांस में लेक्चर में सारे उन्होंने साथ साथ लिखे। जब फर्स्ट लेक्चर लिख के वो मेरे पास आई तो कहती है साजा आपको पता है आपने कितने लफ्ज़ बोले हैं, मैंने कहा कितने, मैं 50 मिनट, 45, 50, 60 तो दुआ शुआ के साथ चलता है, दर्स लेक्चर जिसमें मैं अपने नॉन स्टॉप बोलती हूँ ना वो 50 मिनट के अंदर बाहर होता है, 45,000 लफ्ज़ मैंने बोले। और आप मेरा गुमान है कि उन्होंने एक एक नहीं लिखा, आप मेरे साथ बैठ के नोट्स लेंगे तो क्या एक एक लफ्ज़ लिखते, एक एक लिखने के लिए तो आपको रोकना पड़ता है, पॉज देना है, फिर जुमला पूरा करें, वो तो आप 1 घंटे का लेक्चर 6 घंटे में लिखेंगे, और उन्होंने बकौल सारा लिखा है लेकिन उन्होंने जो लिखे वो 45,000 लफ्ज़ लिखे, मैं तो कांप के रह गई। माँ यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, अल्लाह ताला सूरह क़ाफ़ में कहते हैं जो एक लफ्ज़ भी तुम निकालते हो ना उसको भी हाजिर बाश फरिश्ता फ़ौरन लिख लेता है। तो कल क़यामत के दिन हम कैसे अपने बोले हुए लफ्ज़ों का इनकार करेंगे, तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को आइडियलाइज करें, आप अपने बच्चों को देखिए, अब अगला तसव्वुर आप अपना लाइए बच्चों का, 5 साल बाद मेरे बच्चे कैसे होंगे। देखिए हर एक के बच्चे छोटे भी हैं बड़े भी हैं, आप सबसे छोटे बच्चे की भी उम्र लिख लें और सबसे बड़े की भी। और अक्सर लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी है कुरान सीखने के दौरान, अल्लाह ताला फिर बेबी को देता है तो कहते हैं ये बेबी बिल्कुल फ़र्क है दूसरों से, अब इसकी तरबियत हम वैसे करेंगे जैसे हमने कुरान पढ़ के सीखी है। बड़े बच्चे अब हमारे काबू में नहीं है, हमने उनका हक नहीं दिया, हमने उनको वक्त पे नहीं रोका टोका। लेकिन आप ख्वाब देखें अपने बच्चों के, कोई चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है, यकीन कीजिए मुमकिन है। आप भी बदल सकती हैं, आपके बच्चे भी बदल सकते हैं, आपके हस्बैंड भी बदल सकते हैं। हर चीज़ को बदलते जाएं, सोचते जाएं, सोचते जाएं। फिर इसी तरह आप सोचिए, इस वक्त आप और मैं नॉर्वे में बैठे इस क्लासरूम में, आप सोचिए कि आज से 5 साल बाद मैं दीन के नाम पे, यानी वैसे तो हम सारी दुनिया घूमे जहाँ भी, लेकिन चूंकि हम इस वक्त अपनी सक्सेस देख रहे हैं ना, तो मैं दीन के नाम पर किस मुकाम पे पहुँच चुकी होंगी। मिसाल देती हूँ कि मैं अगर अपनी मिसाल आपको दे दूँ, अभी 2 वीक पहले एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ। हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है था अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो लास्ट ये फ्राइडे नहीं, उससे पिछले फ्राइडे को उसकी कम्प्लीशन हुई। ये हमारा सेकंड ओल्डेस्ट कोर्स था। सबसे पहला जो ऑनलाइन कोर्स, जो बेग कोर्स था, 4 घंटे की तफसीर होती थी शायद, और रब का पैगाम मेरे नाम था। जब हमने वो शुरू किया, कुछ अर्सा हो गया पारे शुरू हुए, तो फिर एक वंस अ वीक क्लास शुरू की थी, तो उसका नाम हमने रखा था रब का पैगाम उम्मत वसत के नाम। 8 साल में वो कोर्स पूरा हुआ माशाल्लाह। लास्ट 2 वीक पहले मैं उस दिन आयरलैंड में थी और हम लोग डबलिन में थे और डबलिन से कॉर्क शाम को जाना था। उस दिन वो कोर्स ऑनलाइन पूरा हो रहा था, तो साथियों की रिक्वेस्ट थी कि आपने हमारे साथ ज़रूर रहना है, और ऑफ कोर्स वैसे भी मेरी ख्वाहिश होती है ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी बहुत बात करूँ, और स्पेशल डेज़ में तो ज़रूर बुलाते हैं। मैंने कहा आप मुझे ढूंढते रहिए फ़ोन पे तो होगा। खैर, जब हमने डबलिन का सुबह का लेक्चर पूरा किया, हमारी एक और स्टूडेंट थी उनके घर पर हम सारे ही थे इकट्ठे लंच के लिए, तो वहाँ उसका टाइम शुरू होना था 3 बजे के करीब। हमने उन्हें कहा कंप्यूटर दे, कंप्यूटर खोला, वो क्लास शुरू हुई। वो सारी सुना रहे थे, सुन रहे थे अपनी बात, ये कब शुरू हुई कैसे, उसी में उन्होंने सारी डेट्स बताई, इतने पारे तब हुए, इतने तब हुए, ये हुए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे लिया, तो फिर मैंने माइक लिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो पुरानी आईडीज़ और ये वो कर करा के, खैर 15-20 मिनट मैंने उनसे बात की। और मैं वो लाइव क्लास लेती थी, वो मैं अमेरिका में थी, सिर्फ मैं लेती थी घर से, यानी ऑनलाइन ही थी वो, अमेरिका की रात होती थी या सुबह थी, एनी वे यानी वो ओनली ऑनलाइन कोर्स था, वंस अ वीक था। फिर उसके बाद जब मैं 5 साल पहले ओस्लो आ गई, मूव हुई, तो फिर दिन रात का फ़र्क हो गया, कुछ इधर की क्लास का टाइम, कुछ उधर की, करते कराते फिर हमने उसको इधर की सवीलुल जन्ना के साथ सेट किया। यानी उस क्लास ने हमारे बड़े वो कहते हैं अप्स एंड डाउन्स देखे, क्योंकि ना तब इतनी भरपूर रिकॉर्डिंग होती थी, ना एडिटिंग थी, वो तो चीज़ें थी ही नहीं जो अब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको सुनाती हूँ कि जिस दिन मैंने ये कोर्स शुरू किया था उससे लेकर आज के दिन तक मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ आया। मोटी मोटी मैंने उनको 8 साल की कहानी सुनाई। तो मैंने कहा जिस दिन मैंने ये कोर्स शुरू किया था, मेरे वहमो गुमान में लफ्ज़ आयरलैंड भी नहीं था, ना मुझे डबलिन पता था आयरलैंड की, तो वो हाँ एक स्टूडेंट उसकी वजह से काम हुआ। फिर उसके बाद खैर सब इमोशनल थे, साथियों ने भी बातें की। उसके बाद उन्होंने आगे कैरी ऑन किया, उन्होंने मुझे कहा कि अब हमने आपको एंड पे भी ज़रूर साथ रखना है दुआ के लिए। मैंने कहा ठीक है, हम जहाँ होंगे फ़ोन करना। अब ये कर करा के हम नमाज़ पढ़ के डबलिन से निकले कॉर्क के लिए, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव है। बिल्कुल जब मिड पे पहुँचे तो फ़ोन आने शुरू हो गए कि अब उधर क्लास पूरी हो रही है, अब दुआ करानी। मैं कल आए कराते हैं फिर क्या, मैं पूरे दिन की थकी हुई थी, तो मैं पीछे बल्कि लीन कर रही थी लेट के, जैसे आप पाँव भी ऊपर करके थी। मैंने कहा मुझे फ़ोन पकड़ाएं। मैं डबलिन से कॉर के रास्ते में गाड़ी में लेटी हुई एक किस्म की फ़ोन पे उनके सब बातें कर रही, और उनको मैंने पहले ही बता दिया कि पीछे आवाज़ें हैं, हाईवे पे हम फुल स्पीड जा रहे हैं, और आप में से जो गया आयरलैंड वहाँ हवा बहुत चलती है, गाड़ी यूँ बजती है, यूँ विंड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी के अंदर है ना, तो चारों तरफ से हवा आती है। किस्सा मुख्तसर के वो दुआ जो मैंने उस वक़्त करवाई, और हम रस्ते में और जो बाकी लोग गाड़ी में थे, बाद में उनका फीडबैक था कि आज हमारी ज़िंदगी की ये सबसे अमेजिंग दुआ थी जो आज हमने सेशन लिया। तो अगर मैं कहती मैं रस्ते में हूँ, मैं सफ़र में, सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल, तो क्या है वो खुद कर करा लेते। लेकिन वो जो मैंने इंजॉय किया, और जो मैं और मैंने साथ कह भी दिया कि मेरी ये पोजीशन है, इसको ऐसे ही रखिएगा, हमने कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी करनी है, ताकि लोगों को ये सिखाएं हम सब के हर हाल में दीन का काम करना, असल ये बात है। कोई चीज़ आपके रास्ते की रुकावट नहीं बननी चाहिए। और आप देखिए कि अभी तो आप बच्चे हैं, बच्चे से मुराद है कि अभी आपका 8वां 9वां पर है, अभी बड़ा लंबा सफ़र है। अगर आपके अंदर जोश और जज्बे नहीं होंगे ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं रोक लिए जाएंगे। ایک انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، امپاسیبل آئی ایم پاسیبل میں بدل جاتا ہے۔ اللہ کے ہاتھوں میں خود کو دے کے دیکھیں، خواب بڑے سے دیکھیں، کوشش بھرپور کریں اور نیت اچھی رکھیں، ارادے بھی بڑے رکھیں اور انجام اللہ کے ہاتھ پہ ڈال دیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ بلند، ہائی رائز، بڑے بڑے خواب دیکھے زندگی میں۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے بس ایسے ہی جی کے 4 دن پڑھ کے جاب کر کے شادی کرا کے 2-4 بچے پال کے دنیا سے چلے جانا ہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ کیا ملے گا آپ کو اس کے اینڈ پہ؟ کامیابی تو کچھ لوگوں کو ملتی ہے، دنیا کی بھی، جن کو ملتی ہے وہ شادی کے بعد وہ جاب ہی نہیں کرتے، پڑھا کچھ ہوتا ہے جاب کچھ اور کرنے لگتے ہیں۔ وہ کامیابی لینی ہے میں نے اور آپ نے جس کے بعد ناکامی کا تصور بھی نہ ہو۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابیاں پائیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ کہتے ہیں میں نے فرسٹ کلاس زندگی بسر کرنی ہے، اللہ آپ سے فرسٹ کلاس کام لے گا۔ آپ کہتے ہیں چلو اللہ کچھ تو کرا لے، جیسے مجھے یاد ہے کسی کی بچے نہیں تھے تو لوگ کہتی تھی اللہ مجھے بیٹی دے دے، تو میں نے کہا کیوں، اللہ کے پاس بیٹوں کی کمی ہے؟ میرا ہوتا کہ چلو بیٹا نہیں نصیب ہے تو بیٹی ہی دے دے، میں نے کہا آپ مانگے اللہ سے، اللہ مجھے بیٹا ہی دے بلکہ 2 بیٹے اکٹھے دے۔ کیا اللہ کے پاس کو بیٹوں کی کمی ہے کہ آپ چلے بیٹی پہ راضی ہو رہے؟ آپ بڑی چیز مانگیے، پھر جو مرضی اللہ دے۔ تو خواب بڑے دیکھیں گے، ارادے بڑے دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی میں خواب بڑے دیکھنے کے بعد فائدہ ہوگا، کوئی چیز آپ کے راستے کی انشاءاللہ رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور یاد رکھیے کہ زندگی کا مقصد لینا نہیں ہے، دینا ہے۔ اب چند باتیں اپنے فائدے کی سوچ لیں۔ ہم سوچتے ہیں ہم لیں گے تو فائدہ لیں گے نا، نہیں۔ آپ کہیے کہ میں نے 5 سال بعد اس سوسائٹی کو کچھ واپس کرنا ہے، پے بیک کرنا ہے۔ میں کتنے پیسے خیرات کروں گی، میں کتنے لوگوں کو پڑھاؤں گی، میں کتنا ڈونیشن دوں گی، میرا صدقہ جاریہ کتنا ہوگا، میں کتنی جگہوں پہ دین کے نام پہ حصہ ڈالوں گی، میں کتنے غریبوں کے بچوں کو سپانسر کروں گی، کیا کیا جو بھی ہے۔ آپ یہ اچھے اچھے خواب بھی لکھیں۔ کامیابی کا حتمی ہدف خود مزے اڑانا نہیں بلکہ دوسروں کو اپنی کامیابی کے ثمرات میں شامل کرنا ہے۔ یہ تو کام آپ کر رہے ہیں نا قرآن سیکھنے کا، یہ آپ کو اس قابل کر رہا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اپنے پڑھنے کا فائدہ دیں گی۔ پیسہ، خوشحالی، معاشی آزادی کا صحیح مزہ تب ہی اٹھایا جا سکتا ہے جب اس سے کسی اور کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ یہ مت بھولیے کہ زندگی لینے والوں سے لیتی ہے اور دینے والوں کو اور بھی زیادہ دیتی ہے۔ جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ان کو کوئی آیت یاد آ رہی ہے قرآن کی؟ چلیے میں سورت کا نام لے لیتی ہوں، سورت رات، وَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ، سورت رات، جو لوگوں کو نفع دے گا نا وہی بچے گا۔ اللہ ہمیں نفع والا کر لے، ایسا درخت بنے کہ جس کا پھل اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ دیتا رہے، پھر لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ آج لوگ نیوٹن کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے کچھ دیا۔ عمر کو، علی کو، عثمان کو، صحابہ کو کیوں یاد کرتے ہیں لوگ؟ کیونکہ انہوں نے انسانیت کو کچھ دیا۔ جب ہم دیتے کوئی نہیں نا تو تھوڑے دن بعد لوگ خوش ہوتے ہیں، چلو اچھا جگہ ختم ہوئی، نکلے اس کی جگہ کوئی اور آ جائے، پھر انشاءاللہ آپ فائدہ کریں گے اور فائدہ ملے گا آپ کو۔ اور اگر آپ یہ سب کچھ کر گے تو آپ دیکھیے گا کہ بڑے بڑے سمندر بھی جائیں گے اور مشکلات آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو الگ کریں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ شیخ چلی کے خواب ہیں، چھوڑو ایسے خوابوں میں رہتے ہیں، نہیں بنائیں، آج جا کے آپ سب اپنا گول بنائیں، بالکل انڈیویجول بیسڈ، ہر ایک کا فرق بھی ہو سکتا ہے اور ایک ایج کے اور ایک ماحول میں ہونے کے جیسے سیم بھی گول ہو سکتے ہیں، پھر اس کو جم جائے لینے کے لیے، پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لوگ کچھ بھی کریں آپ کو کیا لگے، لوگ کسی انداز سے جئیں آپ کو کیا لگے، آپ کا ایک اپنا سٹائل ہے، اٹس مائی سٹائل، اٹس مائی لائف۔ آج تو لوگ یہی سناتے ہیں اٹس مائی سٹائل، تو آپ کہتے ہیں اٹس مائی سٹائل، اٹس مائی چوائس، یس اٹس مائی چوائس، ہو آر یو، آئی ایم آئی، میں ہوں، آپ کو کیا لگے۔ जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, कोई आपको नहीं रोक सकेगा। और फिर अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी निकाल दें, ये भी लिख लें। मनफी जज्बे रखने यानी नेगेटिव अप्रोच रखने वाले कामयाब कभी नहीं होते। आज से इस सफ़े को फाड़ दें कि दुनिया में कोई आपका दुश्मन भी है, कोई आपका हासिद है, कोई आप से नफ़रत करता है, कोई आपको नापसंद करता है। ये सब सफ़े फाड़ दें। आप लिखें, दुनिया का हर इंसान मुझसे प्यार करता, कोई मेरी बुराई नहीं करता, कोई मुझसे हसद नहीं करता। अब मैंने लोगों को देना है, और आप देखेंगे कि जिस दिन आपके दिल में सच्चाई आएगी ना, तो लोग भी आपसे सच्चे ही प्यार करेंगे। हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं। आने वाली ज़िंदगी का सामना करें खदशात के साथ, तफक्कुरात के साथ, बेयकीनी के साथ और कन्फ्यूजन के साथ। लुक एट आई एम कन्फ्यूज्ड, समझ नहीं आता क्या करूं। या फिर आप अपनी ज़िंदगी का सामना कर सकते हैं प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ और मंसूबे के साथ, और लाहे अमल के साथ और दूरबीनी के साथ। ये अब आपकी मर्ज़ी। कन्फ्यूजन के साथ सोचेंगे ना तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। फ़ैसला आपके हाथ में है, आपने ज़िंदगी को डिज़ाइन करना है या इसे इसके हाल पर छोड़ देना है। इस वक्त जो तसव्वुराती घोड़े दौड़ाने की कोशिश में हम हैं, ये ज़िंदगी को डिज़ाइन करने की तरफ पहला कदम है। अपनी ज़िंदगी के मास्टर डिज़ाइनर तो आप खुद ही हैं, तो फिर 5 साल के बाद आपका डिज़ाइन अगर मंजूर हो जाए, अल्लाह की कबूलियत की मोहर इस पर लग जाए, तो आपकी ज़िंदगी क्या होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई फरिश्ता आपके पास आए और कहे कि हुक्म कीजिए, तो आप कहें कि मेरे पास तो तुम्हें बताने के लिए कुछ है ही नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी को भरपूर जीना है। डिप्रेशन, तकलीफ़, दुख, बीमारियाँ, ये मुसलमानों को नहीं होती, ये कुफार के सर दर्द है, जिनका अल्लाह पे ईमान नहीं है, जिनको अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि बस वो हमें अपने साथ जोड़े। अच्छा, आप कहेंगे इतनी ज़रूरत आती कैसे? अल्लाह के साथ मज़बूत ताल्लुक से। जितना आपका अल्लाह के साथ रिश्ता पक्का होता जाएगा ना, आप रूहानी तौर पे स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और जितना अल्लाह के साथ आपका रिश्ता पक्का होता है ना, अल्लाह की मखलूक के साथ भी आपका ताल्लुक जुड़ता है। शर्त एक है कि अल्लाह की मर्ज़ी के अंदर रहते हुए आप उनके साथ मामला रखें। जैसे तेज़ कटाव वाली पानी की नदी के किनारे सख्त पत्थर के अंदर उगने वाला नन्ना मासूम सा पौधा पानी के जानलेवा थपेड़ों के बावजूद टूटता नहीं है, मरता नहीं है, ख़त्म नहीं होता, महज इसलिए कि वो इस पत्थर में मजबूती से जड़ें पेवस्त किए होता है। बिल्कुल इसी तरह जब आपकी जड़ें अल्लाह की हस्ती के साथ मजबूती के साथ पेवस्त हो जाती हैं, तो रोज़मर्रा की तकलीफ़ें, नाउमीदियाँ, मुश्किलात और नाकामियाँ आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालात के तुंदो तेज़ कटाव, थपेड़े और हरबे आपको खड़ा रखते हैं, मजबूत रखते हैं। अल्लाह के साथ इस तरह मजबूती से जुड़े रहना आपको गिरने नहीं देता। लेकिन रिश्ते की इस मजबूती को आप 5 साल में कैसे हासिल करेंगे, क्या तरीका अख्तियार करेंगे? मेरा ख्याल है आपका ये कुरान 5 साल में पूरा हो जाएगा, उससे भी पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। आप नूरुल्ला नूर भी कर रहे होंगे। आज से अपनी ज़िंदगी का ये गोल बनाएं कि मैंने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करना है। यकीन करें, कोई नहीं है हमारा उसके सिवा। और ताल्लुक़ बिल्ला इतनी बड़ी ताकत है, जो काम पैसों से नहीं होते। सोने चांदी को देकर जो चीज़ें नहीं मिलती ना, वो अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ के साथ होने लगती हैं। और इंशाल्लाह आप इस पे जब ज़ोर देंगे ना, तो इसका रास्ता जो है वो फिर नबी सल्लम की ज़िंदगी से गुज़रता। आप अल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद पर तो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हर जंग में दुश्मनों से कम होने के बावजूद फतह आपकी हुई। और जिस वक्त आपको ये यकीन हो जाएगा कि अल्लाह आपके साथ है, तो आप ज़िंदगी के बड़े बड़े चैलेंजेस को खुशी के साथ कबूल करेंगे कि बस मैंने भी ये करना है, मेरा रब करवाएगा और हो जाएगा। तो अब आप ख़ुद सोचिए कि आप आज से 5 साल बाद कहाँ होंगे।